नमस्कार भारत, 1 अक्टूबर दिन सोमवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। इंडोनेशिया के भूकंप प्रभावित क्षेत्र में अब भी कई के मलबे में दबे होने की आशंका, खाना पानी को तरसे पीड़ितों को सरकार का दिलासा।
मांग जरूरत प्रति किलो जाता।
किन कारणों से याद किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का कार्यकाल?
सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने उनके खिलाफ लगभग बगावत कर दी थी। इसके अलावा उन्होंने करीब करीब 15 से 20 बहुत महत्वपूर्ण फैसले सुनाए।
और भारत के युवा बल्लेबाजों के लिए क्यों अहम है वेस्ट इंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज, जानेंगे खेल खिलाड़ी में।
जो मुझे लगता है कि राहुल के साथ ओपन करेंगे, मयंक अग्रवाल की भी जगह शायद बन सकती है, हनुमा विहारी है जो अपने होम पिचेस पे अगर अच्छे रन बनाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा।
होगी पाकिस्तान डायरी भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। इंडोनेशिया के सुलवेसी द्वीप पर विनाशकारी भूकंप और सुनामी आने के 2 दिन बाद भी प्रभावित लोग अपनों की तलाश में जुटे हैं। मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम अभी जारी है। भारी उपकरण न होने की वजह से मलबे में फंसे लोगों को निकालने में दिक्कतें आ रही हैं। पालू के एक होटल के मलबे के नीचे ही करीब 60 लोग फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए राहत कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रभावित लोगों के सामने अब खाने के सामान और पीने के पानी का संकट है और वो दुकानों से खाद्य सामान ले जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि वो दुकानदारों का भुगतान कर देगी। इस आपदा की वजह से अब तक 800 से अधिक लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और ये संख्या और अधिक बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। मैसेडोनिया में देश का नाम बदलकर नॉर्थ मैसेडोनिया रखने को लेकर हुआ जनमत संग्रह पर्याप्त मत संख्या न होने की वजह से अवैध हो गया है। जनमत संग्रह के मान्य होने के लिए कम से कम 50% मत पड़ना जरूरी था, लेकिन राष्ट्रवादी विपक्ष के बहिष्कार के आह्वान की वजह से सिर्फ 1/3 योग्य मतदाताओं ने ही मतदान किया। मतदान करने वाले करीब 90% लोगों ने नाम बदलने के पक्ष में मतदान किया था। नाम में ये प्रस्तावित बदलाव ग्रीस के साथ लंबे समय से चले आ रहे विवाद को समाप्त करने के लिए किया जा रहा था। ग्रीस मैसेडोनिया के नेटो और यूरोपीय संघ की सदस्यता लेने का विरोध करता रहा है। जनमत संग्रह के नतीजे प्रधानमंत्री जोरान ज़ाइफ के लिए बड़ा झटका माने जा रहे हैं। वहीं विपक्ष ने नतीजों पर खुशी जाहिर की है। विपक्ष के नेता रिस्तेजान मिचकोस्की ने कहा, दोस्तों, अब हमारे सामने एक नई आम सच्चाई है। हमारे मैसेडोनियाई नागरिकों ने, अल्बानियाइयों, तुर्को रोमा लोगों ने, सर्ब लोगों ने और बोस्नियाक लोगों ने समझदारी दिखाई और अपने आप को गुमराह नहीं होने दिया। इस जनमत संग्रह की जरूरत ही नहीं थी। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र पर और अधिक हमले ना करें। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद मर्केल ने यह बयान दिया है। अपने भाषण में ट्रंप ने वैश्विकता पर निशाना साधते हुए राष्ट्रवाद को तरजीह दी थी। मर्केल ने कहा है कि किसी चीज का विकल्प स्थापित किए बिना उसे नष्ट करना बेहद खतरनाक हो सकता है। उन्होंने वैश्विक मामले निपटाने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों का समर्थन करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप सभी के लिए फायदेमंद समाधानों को देखने में नाकाम हो रहे हैं। एंगेला मर्केल ने कहा,
Das beginnt bei dem heutigen amerikanischen Präsidenten, der sagt,
इसकी शुरुआत राष्ट्रपति ट्रंप से हुई है, जिन्होंने कहा है कि बहुपक्षीयता समस्याओं का समाधान नहीं है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि कुछ परिस्थितियों में सिर्फ कोई एक पक्ष ही जीत सकता है। इससे पता चलता है कि वो सभी के फायदे के समाधानों में विश्वास नहीं रखते हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच अपने व्यापारिक रिश्तों में सुधार करने के लिए महीनों से जारी बातचीत अपने अंतिम घंटों में है। उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते को फिर से तैयार कर रहे वार्ताकार विवाद सुलझाने की प्रक्रिया और कर की दरों जैसे कई मुद्दों पर अटक गए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले ठोस आश्वासन और सुरक्षा उपाय चाहते हैं। दूसरी ओर मेक्सिको और अमेरिका ने बीते महीने ही अपने मतभेद समाप्त कर लिए थे। मौजूदा समझौते के तहत अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको आपस में $30,000 करोड़ का कारोबार करते हैं। ब्राजील में राष्ट्रपति पद के दक्षिणपंथी उम्मीदवार जाइर बोल्सोनारो के 10,000 समर्थकों ने देश भर में रैलियां निकाली हैं। सबसे बड़ी रैली साओ पाउलो में निकाली गई, जहां उनके समर्थकों ने मुख्य पार्टियों के नेताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी की। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। नमस्कार भारत में सबसे पहले बात इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया ने इस साल भूकंप के कई झटके झेले हैं, लेकिन शुक्रवार को आए भूकंप और उसके बाद उठी सुनामी की लहरों ने बर्बादी की जो कहानी लिखी है उसका पूरा आकलन अब तक नहीं हो सका है। सुलवेसी द्वीप पर हर तरफ तबाही के निशान दिखते हैं। मरने वालों की संख्या 800 के पार पहुंच चुकी है। अधिकारियों का अनुमान है कि यह संख्या अभी और बढ़ सकती है। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बचाव दल के पास साधन और वक्त दोनों कम है। जो जीवित बचे हैं उनके लिए जिंदगी बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। जिन्हें भूख परेशान करती है वो खाना और पानी खोजने में जुटते हैं, और जिन्हें कुदरत के कोप के बीच बिछड़े याद आते हैं वो मुर्दा घरों में भटक रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी दिलनवाज पाशा।
इंडोनेशिया के सुलवेसु द्वीप पर दो दिन पहले आए विनाशकारी भूकंप की कंपन अभी पूरी तरह नहीं थमी है। 6 मीटर की ऊंचाई तक उठी सुनामी की लहरें वापस समुद्र में लौट गई हैं, लेकिन अपने पीछे जो तबाही उन्होंने छोड़ी है उसकी पूरी भयावहता अभी सामने आनी बाकी है। अधिकारियों ने 800 से अधिक लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है और ये संख्या हजारों में होने की आशंका जाहिर की है। भूकंप और सुनामी से प्रभावित सुलवेसु के सबसे बड़े शहर पालू में अभी भी लोगों को मलबे के नीचे से निकाला जा रहा है। मलबे का ढेर बन चुके एक होटल में फंसे 60 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत कर्मी दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन भारी उपकरण न होने की वजह से उनका काम जटिल और मुश्किल हो गया है। जो लोग बच गए हैं वो मुर्दा घरों और अस्पतालों में अपनों को तलाश रहे हैं। शहर की सड़कें और खुले मैदान राहत कैंप बन गए हैं। अस्पताल ध्वस्त हो जाने की वजह से घायलों का इलाज सड़कों पर ही किया जा रहा है। भूकंप और सुनामी ने एक ही झटके में लाखों लोगों की जिंदगी तहस नहस कर दी है। इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गवा दिया। मैं अपनी पत्नी को गले लगा रहा था, लेकिन जब लहर आई तो उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया। लहर मुझे 50 मीटर तक ले गई। मैं कुछ भी पकड़ नहीं पा रहा था। पानी मुझे घुमाया जा रहा था। सामने एक दुकान थी, मैं उस पर चढ़ गया जहां मैंने कुछ आराम किया, और फिर एक और लहर आई जो पहले से अधिक ऊंची थी। अचानक मैं छत पर था। फिर मैं इमारत की दूसरी मंजिल पर गया और अपनी जान बचाई। आज मैं वापस समुद्र तट पर गया। मुझे अपनी मोटरसाइकिल और अपनी पत्नी का पर्स मिला। फरीदा हमीद नाम की इस महिला ने अपने भाई को खो दिया है। किसी ने मुझे बताया कि मेरा भाई ठीक है, वो नमाज पढ़ने जा रहा था। मुझे सुनकर कुछ राहत मिली। हमने रात भर उसके लौटने का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया। मैं दुआ करती हूँ कि वो सुरक्षित घर लौट आए, क्योंकि मेरे दिल में उसके ठीक होने की उम्मीद है। लेकिन अगर अल्लाह कुछ और चाहता है तो अल्लाह की मर्जी। हम सब मिलकर उसे खोजते रहेंगे। प्रभावित लोगों के सामने अब खाने के सामान और पीने के पानी का संकट है। लोग दुकानों से जो मिल पा रहा है उठा ले जा रहे हैं। सरकार ने कहा है कि वो बाद में दुकानदारों का भुगतान कर देगी। राष्ट्रपति जोको विडोडो पालू के हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। उन्होंने स्थानीय नेताओं से कहा है कि सरकार हर संभव मदद करेगी। ये एक आपात स्थिति है, जैसे कि लोमबोक में थी। एक दो दिन तक यहाँ चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल लगेंगी। यहाँ तक पहुँचने की सड़क अधिकतर नष्ट हो गई है। हवाई अड्डा भी सही से काम नहीं कर पा रहा है। बिजली संयंत्रों को नुकसान पहुँचा है। 7 में से सिर्फ 2 ही चल पा रहे हैं। सड़कें टूटी होने की वजह से सभी जगह तक ईंधन और अन्य सामान नहीं पहुंचाया जा सका है। लेकिन हमने ईंधन समेत हर जरूरी सामान को प्रभावित लोगों तक पहुंचाने के आदेश दिए हैं। 2 दिन बाद आपूर्ति होने लगेगी। हम लोगों से सब्र से काम लेने की अपील करते हैं और उनकी बेहतरी की दुआ करते हैं। मैं अगले सप्ताह फिर आऊंगा और सुनिश्चित करूंगा कि सभी चीजें ठीक से काम करें। भूकंप के केंद्र के पास स्थित डोंगाला शहर में विनाश और भी ज्यादा हुआ है। संपर्क मार्ग टूट जाने की वजह से नुकसान का पूरा जायजा अभी नहीं मिल सका है। बचावकर्ता पालू की तरह यहां भी फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कट गए संपर्क मार्गों को जोड़ने और प्रभावितों तक राहत सामग्री पहुंचाने का मुश्किल काम अभी बाकी है।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। इंडोनेशिया में भारतीय भी बड़ी संख्या में रहते हैं, लेकिन जो क्षेत्र भूकंप और सुनामी से प्रभावित हुआ है वहां भारतीयों की आबादी कम है। जमीनी स्थिति की सही जानकारी के लिए हमारी साथी मानसी दास ने इंडोनेशिया के बाली में मौजूद भारत के कौंसुल जनरल सुनील बाबू से बात की।
दिस इज ऑलमोस्ट 800 प्लस इन पालू अलोन. बंगाला रीजेंसी में इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं चल नहीं रहे, कम्युनिकेशन कम है. ये फिगर जो उन्होंने अभी निकाला है वो खुद बोल रहे हैं और मुझे अंदाजा भी है कि वो तो आउट पर जाएगा. ये हमें भी पता है पिछले वो लोम्बोक के बाद में भी तो जो उन्होंने फिगर्स जो है एक्सपोनेंशियली वो दिन दर दिन बढ़ते गए थे. जब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है तभी उनको पता चलता है कि ये डैमेज कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है. अभी तो फोकस अभी जो है कि बेसिकली इवैक्यूएशन पे है. अफेक्टेड एरिया से उनको तो कहीं सिक्योर जगह पे लेके आए, रिलीफ मटेरियल्स जो है वो लेके आ जाए. तो शायद पता होगा कि एयरपोर्ट भी डैमेज था तो उनको नेविगेशन इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, वो तो उन्होंने मकासार से एयरलिफ्ट कर दिए टेम्पररली. जहां पे मुझे पता है फ्लाइट्स भी तो विजुअल लैंडिंग पे चल रही है.
विजुअल लैंडिंग वुड मीन कि अब आंख से जो दिखता है अब वहां लैंड करते हैं.
कंप्लीट
बहुत रिस्की हो जाता है.
टावर कोलैप्स हो गया ना, जब टावर कोलैप्स हो गया तो फिर तो और कुछ बचा नहीं उसमें. इसका फाइनल फिगर्स लेने में तो कम से कम एक हफ्ता तो लगेगा, इतना टाइम तो लगेगा इसमें.
क्या आपके पास कोई जानकारी है कि वहाँ कितने इंडियंस पर असर पड़ा है?
एक्चुअली इंडोनेशिया में जो इंडियंस जो है ना 1 लाख के ऊपर है वो, लेकिन फोकस्ड है मैदान जकार्ता सुरबाया और या बाली में भी एक करीब 200-300 इंडियंस है और इंडियन ओरिजिन लोगों को मिला के 1000 के करीब है. लेकिन उस एरिया में जो जहाँ वो जो सेंट्रल सुलावेसी मनाडो वगैरह है उधर तो इंडियंस है ही नहीं. साउथ सुलावेसी में है इंडियन ओरिजिन लोग है, 3-4 इंडियंस है. लेकिन एक इंडियन था उधर, वो उसका उसने तो खबर दिया था तो उससे मैंने बात कर ली है. वो जा रहे थे इस एरिया में डाइविंग के लिए लेकिन किस्मत से उसको जो पता चला वो बोट से उतरा और फ्लाइट पकड़ा, मकासर आया और वो कल बाली पहुंच गया है. लेकिन इंडियंस पर से अभी तक कोई खबर नहीं है, किसी को कुछ पता है. आपको शायद पता होगा ना, एक साल से तो इंडोनेशिया में कुछ ना कुछ होता रहा है. यहाँ बाली में ही वो आगुन का अलर्ट लेवल बढ़ा दिया, फिर नवंबर में इरप्शन हो गया, तो उसके बाद फिर लोम्बोक पे जो ट्विन अर्थक्वेक हुआ था, तो वो कुछ ना कुछ चल रहा है. वो आई थिंक ऑल द टेक्टोनिक शिफ्टिंग दैट्स गोइंग ऑन. सो इनके जो रिपोर्ट्स जो मैंने पढ़ा है वो कह रहे हैं कि वो इट इज अ जंक्शन ऑफ थ्री प्लेट्स. हाँ, पिछले चार पांच दिन से माइनर ट्रेमर्स चल रहा था, फिर वो एट सम क्रिटिकल पॉइंट आई सपोज, वो भी दो था, एक तो पहले 6.0 था, देन दिस वन 7.5.
अच्छा, इट वाज अगेन ट्विन अर्थक्वेक.
या मोर लेस, बिकॉज़ देयर वाज वन एट अराउंड 6 आवर्स बिफोर इन डंगाला, 3-4 आवर्स बिफोर. डंगाला में तो इट वाज टोटली, बिकॉज़ इट वाज ऑलरेडी अफेक्टेड बाय द अर्लियर अर्थक्वेक जो 3-4 घंटे पहले हुआ था. सो इट वाज टोटली कट ऑफ, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो कम्युनिकेशन एंड डैमेज टू रोड्स एंड ऑल दैट. एंड उस एरिया में भी जो रोड्स जो है इतना अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट दैट गुड, सो
ये थे बाली से सुनील बाबू और उनसे बात कर रही थी मानसी दाश.
खबर सच है अगर बीबीसी पर है.
अगली खबर भारत से. भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा का कार्यकाल 2 अक्टूबर यानी कल खत्म हो रहा है. इस दिन गांधी जयंती की छुट्टी होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन उनका अंतिम कार्य दिवस होगा. जस्टिस मिश्रा का कार्यकाल कई वजहों से चर्चा में रहा, इसे किस तरह याद किया जाएगा? हमारी साथी मानसी दास ने ही ये सवाल किया वरिष्ठ पत्रकार अनूप भटनागर से.
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र का पूरा कार्यकाल बतौर प्रधान न्यायाधीश बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा है. इस दौरान उन्हें न सिर्फ पद से हटाने जैसी कार्रवाई के लिए कुछ सांसदों का असफल प्रयास का सामना करना पड़ा, हालांकि जो उन्होंने याचिका दी थी वो तकनीकी आधार पर अस्वीकार हो गई थी. उसके अलावा उनको सबसे बड़ी चुनौती उस समय सामने आई उनके, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने उनके खिलाफ लगभग बगावत कर दी थी और उनके कार्यशैली को लेकर के कि वो मुकदमों के आवंटन में पक्षपात कर रहे हैं और अपनी मनमर्जी जगह रोस्टर ठीक से नहीं बना रहे हैं इस तरह से. हालांकि उसी विवाद के बीच में पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण भी कूद पड़े थे और उन्होंने रोस्टर सिस्टम के बनाने के चीफ जस्टिस के अधिकार को चुनौती दी थी. लेकिन इत्तेफाक से हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने उस विवाद को शांत किया.
देखा जाए तो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के कार्यकाल के दौरान कौन कौन से अहम फैसले आए हैं?
प्रधान न्यायाधीश ने करीब करीब 15-20 बहुत महत्वपूर्ण फैसले सुनाए, जिसमें समलैंगिकता को उन्होंने अपराध की श्रेणी से बाहर किया, व्यभिचार या ये कहिए परस्त्री गमन को अपराध की श्रेणी से बाहर किया. उसके अलावा सबरीमला मंदिर में इस तरह से महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, उसको उन्होंने असंवैधानिक घोषित किया है. ये जो कदम इन्होंने उठाए हैं इसको लंबे समय तक तो याद किया जाए. जो देश में जो बदलाव चल रहा है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ियां हैं और व्यभिचार वाले में भी और समलैंगिकता वाले में सबसे ज्यादा जोर दिया गया निजता के ऊपर, निजता का अधिकार को बताया मौलिक अधिकार है।
लेकिन आधार के मामले में निजता के अधिकार,
हाँ आधार में भी उन्होंने निजता को जोर दिया धनंजय,
लेकिन उन्होंने कहा कि इससे खतरे नहीं है, निजता के अधिकार को खतरा नहीं है।
उन्होंने चार फैसले उसमें कहा कि इससे खतरे नहीं है। उन्होंने कुछ चीज जो प्राइवेट प्लेयर बीच में फोन करके धमकाते थे, डराते थे, बैंक वाले जोर डालते थे कि आधार नंबर दीजिए, उसको तमाम सारी चीजों खत्म कर दिया। सीबीएसई के एग्जाम में बच्चों पर दिक्कत हो रही थी स्कूल में, रीजन में, वो सारी चीजें खत्म की गई। दूसरी ओर कोर्ट ने क्या किया है कि इनकम टैक्स के लिए पैन कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आधार अनिवार्य कर दिया
जी।
अब इसका नतीजा क्या है कि जब आप बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं तो आमतौर पर पैन कार्ड नंबर वो लोग मांगते हैं, तो अपने आप ही आधार कार्ड की कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं बैकडोर से हो जाती है।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का विरोध करने वाले जो चार वरिष्ठ जज सामने आए थे, उन्हीं में से एक जस्टिस रंजन गोगोई अब अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। 3 अक्टूबर को उनका कार्यकाल शुरू होगा।
जस्टिस खिलामेश्वर के नेतृत्व में चारों न्यायाधीश, जस्टिस खिलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस कुरजन जोसेफ ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। जस्टिस खिलामेश्वर अब रिटायर हो गए। रंजन गोगोई जी 3 तारीख को देश के नए प्रधान न्यायाधीश हो जाएंगे। जहाँ तक न्यायमूर्ति मदन लोकुर और न्यायमूर्ति कुरजन जोसेफ का सवाल है, दोनों ही नवंबर और दिसंबर में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो अगर आप देखिए तो इस आने वाले 2 महीने में न्यायपालिका का पूरा कलेवर चेंज होने की उम्मीद है। कोलेजियम ही का पूरा कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। बहुत सारे विवाद अपने आप थम जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार अनूप भटनागर। और अब जान लेते हैं कि दिल्ली से छपे अखबारों की आज की सुर्खियां क्या है। दिलनवाज पाशा से।
जी वात्सल्य, कल पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर भारत की सीमा में घुसा और भारतीय सेना ने उसको वापस खदेड़ दिया। ये खबर आज लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। इंडियन एक्सप्रेस बता रहा है पाकिस्तान के अधिकारियों के हवाले से कि उस हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री और अन्य अधिकारी थे। ये खबर सभी अखबारों में पहले पन्ने पर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कल कहा कि शांति नष्ट करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देंगे, और अखबार इसकी व्याख्या पाकिस्तान के लिए कड़े संदेश के रूप में कर रहे हैं।
ज्यादातर अखबारों ने इसको 2 विंडो की तरह लगाया, एक तरफ पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर की खबर, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का।
जी बिल्कुल, ये बयान। इसके अलावा आज के हिंदुस्तान टाइम्स ने साक्षात्कार छापा है केंद्रीय चुनाव आयुक्त ओपी रावत का। रावत जी ने कहा है तकनीक के जरिए चुनावों को प्रभावित करने से जो चुनौतियां पैदा हुई हैं उनसे निपटना सबसे मुश्किल काम इस समय चुनाव आयोग के सामने है। और ऐसी ही एक खबर जनसत्ता में है आज पहले पन्ने पर, जो बता रही है फेसबुक व ट्विटर चुनाव के दौरान फर्जी खबरों पर कसेंगे लगाम। यानी जो 2 सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी हैं वो चुनावों के दौरान जो झूठी खबरें चुनाव प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रकाशित की जाती हैं उन्हें रोकने के लिए कदम उठाएंगे, और साथ ही चुनावों से जुड़ा कुछ भी डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा के हवाले से कहा गया है कि जो समिति गठित की गई है उसने कहा है कि जब चुनाव हो रहे होंगे उस समय चुनाव से जुड़ी पोस्टें करने की अनुमति जो है सोशल मीडिया साइटों पर नहीं दी जाएगी,
चाहे वो विज्ञापन हो या खबरें हों।
जी बिल्कुल। और दिल्ली और NCR में रसोई गैस और CNG PNG महंगी हो गई है, 50 रुपये तक एक सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। ये खबर आज अलग अलग अखबारों के पहले पन्ने पे,
बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर।
जी जी बिल्कुल, बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर महंगे हुए हैं। इसके अलावा जो लखनऊ में हत्याकांड हुआ है जिसमें पुलिस कर्मियों पर हत्या करने के आरोप हैं उससे जुड़ी खबरें अलग अलग अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। एक रोचक बात उसमें ये हुई है कि पहली बार लखनऊ में किसी मुकदमे में दूसरी FIR यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस पर आरोप थे कि मुकदमे को प्रभावित करने के लिए, जांच को प्रभावित करने के लिए मनमर्जी से FIR दर्ज की, और भारी दबाव के बाद पुलिस ने दूसरी FIR दर्ज की है। ये अपनी तरीके का पहला मामला है। विशेष जाँच दल वहाँ पर जाँच कर रहा है, और उत्तर प्रदेश के जो कानून मंत्री हैं उन्होंने एक बयान में माना है कि जो पुलिस है उसने जांच को प्रभावित करने की कोशिश की है। जी वासिल है।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा अखबारों की समीक्षा के लिए।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
शनिवार को संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने एक दूसरे की सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। दोनों तरफ से एक दूसरे पर रिश्तों के सुधार में रोड़े अटकाने का आरोप भी लगाया गया, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार वसदुल्ला खान की राय में रिश्तों की यह दिक्कत आज की सरकारों की देन नहीं है। सुनिए उनकी साप्ताहिक डायरी।
पाकिस्तानी बच्चों को घर या स्कूल में पढ़ाया या बताया जाता है कि मुसलमानों के आने से पहले हिंदुस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था, रोशनी यहाँ इस्लाम लेके आया। ईरान, मध्य एशिया और अरब से सूफी लोग आए तो भेदभाव से तंग आए हिंदू मुसलमान होने लगे। बाहर से आकर हिंदुस्तान में बसने वाले तुर्क, ईरानी और अरब अपने साथ खान पान के नए तरीके लाए, कपड़ों का फैशन लाए, तस्वीरें बनाने का फ़न आया, शायरी और म्यूज़िक आया, ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारतें बनी। मुसलमान बादशाहों ने मकामी हिंदुस्तानियों को तहजीब सिखाई, उनका रहन सहन अच्छा हुआ। हिंदू समंदर पार सफ़र करने से डरते थे, मुसलमान मल्लाहों की देखा देखी उनका समंदर से डर कम हुआ और वह हिंदुस्तान से बाहर जाने लगे और यूं उनके दिमाग से जाले उतरने लगे। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, शाहजहां, औरंगज़ेब हीरो हैं, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, गांधी जी मुसलमान दुश्मन विलन हैं। 1857 की जंग आज़ादी दरअसल अंग्रेज़ों और मुसलमानों की लड़ाई थी। इस जंग के बाद हिंदुओं ने मुसलमानों को हर मैदान में नीचा दिखाने के लिए अंग्रेज़ों से गठजोड़ कर लिया। चुनाचे तंग आके मुस्लिम लीग कायम हुई और फिर मुस्लिम लीग ने हिंदुओं और अंग्रेज़ों से मुसलमानों को आज़ाद करवा के पाकिस्तान बनाया। 1947 में 20 लाख मुसलमान हिंदुओं और सिखों के हाथों मारे गए। 1965 के युद्ध में भारत को करारी हार हुई। चुनाचे भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान में बस रहे हिंदुओं से साजिश करके बांग्लादेश बना दिया। भारतीय बच्चों को घर या स्कूल में पढ़ाया या बताया जाता है कि मुसलमानों के आने से पहले भारत में सुख चैन और प्रगति थी। साइंस और गणित में प्राचीन भारत सबसे आगे था और सोने की चिड़िया कहलाता था। महमूद गजनवी से औरंगज़ेब तक सब गैर मुल्की लुटेरे हैं। उन्होंने मंदिर तोड़े, उनके ऊपर मस्जिदें बनाईं, लाखों हिंदुओं को कत्ल किया, ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया। अगर पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी वगैरह ना होते तो हिंदुओं को ये गैर मुल्की मुसलमान ग़ुलाम बनाए रखते। अंग्रेज़ ने मुग़लों का ख़ात्मा किया मगर 1857 की जंग आज़ादी के हीरो मंगल पांडे और झांसी की रानी हैं। अंग्रेज़ों ने भी मुसलमान बादशाहों की तरह भारत को खूब लूटा। मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का साथ देने की बजाय अंग्रेज़ों की हौसला अफजाई से लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी के तहत मुस्लिम लीग बनाई। मुस्लिम लीग ने भारतीय एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेज़ी एजेंडा आगे बढ़ाया और इनाम में पाकिस्तान पाया। भारत ने पाकिस्तान के साथ हमेशा शांति से रहने की कोशिश की मगर पाकिस्तान ने हमेशा भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। भारत में रहने वाले मुसलमान मुंह से तो खुद को भारतीय कहते हैं पर उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं, लिहाजा उन पे नज़र रखने की ज़रूरत है। अब जब ये पाकिस्तानी और भारतीय बच्चे बड़े होके राजनीति में जाते हैं, फौज में भर्ती होते हैं, राजनायक और बाबू बनते हैं तो हम उन्हीं से उम्मीद रखते हैं कि वो भारत और पाकिस्तान के संबंधों में एक दिन सुधार लाएंगे। क्या मुझे हंसने की इजाज़त है?
उज़ैर साहब की पाकिस्तान डायरी पर अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। और अब खेल की दुनिया की बात करते हैं और सुनते हैं खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। वेस्ट इंडीज की टीम भारत में दो टेस्ट मैचों की सीरीज में दो दो हाथ करने से पहले भारतीय बोर्ड अध्यक्ष एकादश के खिलाफ दो दिवसीय अभ्यास मैच खेली जो बिना किसी नतीजे के कल समाप्त हो गया। लेकिन उनके बल्लेबाजों ने कल पूरे दिन 7 विकेट पर 366 रन बनाकर बल्लेबाजी का जमकर लुत्फ उठाया। सुनील अम्बरीश ने तो नाबाद 114 रन भी बनाए। उनके अलावा क्रिक ब्रेथवेट ने 52, किरण पावेल ने 44 और साई होप ने 36 रन बनाए। इससे पहले भारतीय बोर्ड अध्यक्ष एकादश ने अपनी पारी 6 विकेट पर 360 रन के स्कोर पर समाप्त घोषित की थी। और अब समीक्षा। जैसे तैसे अटकी सांसों के बीच जीता भारत ने एशिया कप, लेकिन वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज कितनी महत्वपूर्ण?
सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट बन गई है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। पहले ऐसा लगा था कि एक हल्की टीम आई है, एक फिलर है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बीच में सीजन भरना है, लेकिन अब बहुत से सवाल खड़े हो गए इंडियन टीम के बारे में इंग्लैंड के दौरे के बाद। जहां तक बैटिंग, तो टॉप ऑर्डर वहां पर नहीं चला, एक विराट कोहली को निकाल दे तो कोई ज्यादा खास बल्लेबाजों ने कुछ रन नहीं बनाए। जी हाँ, तेज गेंदबाज बहुत अच्छा परफॉर्म किए लेकिन स्पिनर्स वहां पर नहीं चमके थे।
ये कहना है क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन का। दरअसल इंग्लैंड से पिछली टेस्ट सीरीज 4-1 से हारने के बाद अब भारतीय टीम वेस्टइंडीज से अपनी ही जमीन पर 2 टेस्ट मैच खेलेगी, जिसका पहला टेस्ट मैच 4 अक्टूबर से राजकोट में खेला जाएगा। माना जा रहा था कि भारतीय टीम इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज बेहद आराम से जीत लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि विराट कोहली भी सीरीज समाप्त होने के बाद ये कहे बिना नहीं रह सके।
बैट्समैन का रन बनाना उतना ही क्रूशल है, वो चीज को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। और इंडिविजुअली हमने लोगों से बात करी है कि क्या इश्यूज थे, क्या चीजें जो ठीक नहीं हुई वो क्यों ठीक नहीं हुई, और उसका क्या तरीका है कि वो दोबारा रिपीट ना हो।
अब दोबारा ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा कहने का फायदा क्या जब मुरली विजय और शिखर धवन को टीम में शामिल ही नहीं किया गया, यहाँ तक कि रोहित शर्मा को भी नहीं। रोहित शर्मा और शिखर धवन तो बीते एशिया कप में जमकर चमके और भरोसा लौटा था शिखर धवन का।
विराट हो या नहीं हो, या जैसे मैं और रोहित हैं, तो हम हर एक मैच को उसी हिसाब से खेलते हैं जैसे कोई अगर बायलैटरल सीरीज हो रही होगी या कुछ भी, तो सेम एफर्ट सेम प्रोसेस रहता है और अच्छा लगता है कि रन बना रहे हैं।
आखिरकार घरेलू जमीन पर दमदार रिकॉर्ड के बावजूद क्यों शिखर धवन का टेस्ट टीम से पत्ता साफ हुआ, अयाज मेमन कहते हैं।
मुरली विजय और शिखर धवन के लिए जगह नहीं बन रही, हालांकि शिखर धवन ने बहुत सारे रन बनाए एशिया कप में, लेकिन वो एक अलग फॉर्मेट में बनाए। और टेस्ट मैच में अगर आप वनडे फॉर्म को लेकर चले सिलेक्शन करें तो कहीं ना कहीं आप नए उभरते हुए टैलेंट की जगह रोक रहे हैं, जैसे पृथ्वी शॉ हो या मयंक अग्रवाल। एशिया कप में बहुत ज्यादा रन बनाए रोहित शर्मा ने भी, लेकिन उनकी भी जगह नहीं बनी।
वैसे शिखर धवन इंग्लैंड में कट शॉट खेलते हुए स्लिप में अधिकतर कैच देते हुए पकड़े गए, उन्होंने अपनी शैली नहीं बदली, जबकि आज के क्रिकेट में विराट कोहली हर देश के खिलाफ अपनी रणनीति बनाते हैं। शिखर धवन की जिद उन्हीं पर भारी पड़ी।
मैं एंजॉय कर रहा हूँ जो मेरा तरीका बैटिंग करने का वो सेम ही रहता है, चाहे मैं अगर कप्तान बनता भी हूँ, वाइस कप्तान हूँ या नहीं हूँ, तो मैं अपना वो तरीका नहीं, मैं अपना सक्सेस मंत्रा नहीं बदलूंगा चक्कर में।
तो अब टीम में किस पर नजर रहेगी, अयाज मेमन अपने अनुभव से कहते हैं।
जहाँ तक बैटिंग का सवाल है, नए खिलाड़ी जैसे आ रहे हैं पृथ्वी शॉ, जो मुझे लगता है कि राहुल के साथ ओपन करेंगे, मयंक अग्रवाल की भी जगह शायद बन सकती है, हनुमा विहारी है जो अपने होम पिचेस पे अगर अच्छे रन बनाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और जहां तक स्पिनर्स का सवाल है, बहुत जरूरी है अश्विन के लिए खास करके कि अच्छे खासे विकेट्स निकाले, ताकि ये बताए कि अभी भी वो न सिर्फ फॉर्म में, इंग्लैंड में ड्रॉप होने के बाद उनका मोरल डाउन नहीं हुआ है।
दुबई के गर्म मौसम में भारत ने एशिया कप जीता, अब भारत में जाति गर्मी है। अगर यहाँ कुछ खिलाड़ी चमके तो टीम से बाहर हुए कुछ धुरंधरों का भविष्य ठंडे बस्ते में जा सकता है। उधर कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब चौथी वरीयता हासिल चीन ताइपे के चो तियन चेन ने 8वीं वरीयता हासिल इंडोनेशिया के टॉमी सुग्रियार्तो को 21-13, 21-16 से, और महिला एकल वर्ग का खिताब तीसरी वरीयता हासिल जापान की नोजोमी ओकुहारा ने 6ठी वरीयता हासिल अमरीका की झांग वेवेन को 21-10, 17-21, 21-16 से हरा कर अपने नाम किया। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही,
और कार्यक्रम के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
इंडोनेशिया के सुलवेसी द्वीप पर विनाशकारी भूकंप और सुनामी आने की वजह से मरने वालों की तादाद 800 को पार कर गई है। अधिकारियों ने यह संख्या और अधिक बढ़ने की आशंका जाहिर की है। मैसेडोनिया में देश का नाम बदलकर नॉर्थ मैसेडोनिया रखने को लेकर हुआ जनमत संग्रह पर्याप्त मत संख्या न होने की वजह से अवैध हो गया है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र पर और अधिक हमले न करें। अमरीका और कनाडा के बीच अपने व्यापारिक रिश्तों में सुधार करने के लिए महीनों से जारी बातचीत अंतिम घंटों में है। उत्तर अमरीका मुक्त व्यापार समझौते को फिर से तैयार कर रहे वार्ताकार विवाद सुलझाने की प्रक्रिया और कर की दरों जैसे कई मुद्दों पर अटके हैं। ब्राजील में राष्ट्रपति पद के दक्षिणपंथी उम्मीदवार जाइर बोल्सोनारो के 10,000 समर्थकों ने देशभर में रैलियां निकाली हैं। इराक में सोशल मीडिया पर चर्चित एक मॉडल की हत्या के बाद साल 2015 में इराकी सुंदरता प्रतियोगिता जीतने वाली शाइमा कासिम ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे देवाशीष कुमार। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।